देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी सरस्वती का उद्भव श्री कृष्ण की जिह्वा यानी जीभ के अग्रभाग से हुआ। इस पौराणिक कथा का आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटन करते हुए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा निराकार शिव ने यह बताया है कि सतयुग में जो आत्मा श्री कृष्ण बनी थी, वही आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा बनती। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल अर्थात जिह्वा द्वारा जो ईश्वरीय त्रिकाल ज्ञान उच्चारित होता है, उसे सुनकर जगत दम्बा सरस्वती का उद्भव अर्थात अलौकिक जन्म हुआ। इस बात को ही ऋषि कवियों ने शास्त्रों में लिखा कि सरस्वती का जन्म श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से हुआ।
यज्ञ की स्थापना में जगदम्बा सरस्वती की शिरोमणि पवित्रता, घोर तपस्या, अटूट निश्चय इत्यादि की तो जितनी महिमा की जाए उतनी ही कम है। जिन्होंने उनके मुखमंडल को देखा है उनसे पूछिए कि वे कुदरत की क्या कमाल थी। अनेकानेक लोग विकारों से तपते हुए, भोगों में जलते हुए, बदलना चाहते हुए भी बदलने में स्वयं को समर्थ समझते हुए जब मम्मा की दृष्टि के दायरे में आ जाते थे तो चमत्कारिक रीति से परिवर्तित हो जाते थे और उनका आत्मन बोल उठता था, पवित्रता की ऐसी शीतलता, निर्विकार जीवन का ऐसा आनंद, शुद्ध विचारों की ऐसी स्थिति, अहो हम धन्य हो गए, ओ माँ हमें शरण में ले लो, हमारा सारा जीवन धन्य धन्य कर दो। वे ज्ञान योग धारणा पवित्रता की साक्षात देवी थी। विपरीत परिस्थितियों में सदा अभय और पर्वत सम डोल थी। वे स्मृतिधर थी, प्यारे बाबा के एक एक महावाक्य के अनेक राज खोल देने वाली राजयुक्त थी। चातक पक्षी समान ज्ञान सागर की एक एक ज्ञान बूंद की अनुरागी थी। वे चलती फिरती दिव्य परी थी जिनका तन प्रकाश की रश्मियां प्रवाहित करता था और मन सदा अर्श निवासी प्यारे शिव बाबा की ही मधुर स्मृति में समाया रहता था। जादू की छड़ी की तरह उनकी करुणा दृष्टि जिस पर पड़ जाती वह जन जन की तपन थकान और अज्ञान से मुक्ति पा जाता था। प्रेम और ममता की मूरत होते हुए भी वे सदा न्यारी थी। जब वे चलती थी तो लगता था कि प्रकृति का कण कण उनकी चरण रज लेने को आतुर है। वे ही आदि योगिनी आदि तपस्विनी थी। उन्होंने कुमारी कन्या होते हुए भी हजारों ब्रह्मा वत्सों की ममतामयी माँ बनकर उनको पाला पोषा और ज्ञान योग से संवारा। क्या जादू थी उनकी तस्वीर में, क्या सुगंधी थी उनके व्यवहार में, कैसी महक थी उनके कर्मों में। वह मादरे जहान अर्थात वर्ल्ड मदर थी, वह ज्ञान और योग का नमूना थी। उन्हीं मातेश्वरी ने जनता और सरकार द्वारा आई विपत्तियों को झेला। भिन्न भिन्न संस्कारों वाले यज्ञ वत्सों को संस्कारों की भट्टी में से उन्हीं ने ही उज्जवल किया और एक एक को ज्ञान लोरी सुनाकर ज्ञान पालना दी। स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा उन्हें यज्ञ माता की उपाधि देते तथा आदरणीय मानते थे। उनका विवेक अद्वितीय था। उन्हें देखकर कोई पातक हो, घातक हो, चातक हो, सभी कहेंगे माँ। उनका योग प्रकाश ऐसा था कि देखने वाला में आध्यात्मिक चेतना जाग उठती थी। उनके तमोगुणी संस्कार बंद हो जाते थे। सरस्वती जी ब्रह्मा की धर्म की बेटी थी। सरस्वती जी के ज्ञान और दिव्य गुणों की धारणाओं से ब्रह्मा पिता अति प्रसन्न थे। जो वस्तुएं सातों रंगों का त्याग कर देती हैं वे श्वेत दिखलाई पड़ती हैं। अतः श्वेत सर्व त्याग का परिचायक है। जिस तरह सर्व रंगों का सम्मिश्रण श्वेत बन जाता है, उसी तरह सर्व गुण संपन्न व्यक्ति श्वेत कहा जाता है। श्वेत वस्त्र की तरह श्वेत हृदय भी गंदगी को छिपाता नहीं वरन प्रकट कर देता है। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, योग मूर्त जगदम्बा श्री सरस्वती जी सर्वस्व त्यागी थी, अतः उन्हें पूर्ण रूपेण श्वेत दिखलाया जाता है। वही क्यों, उनका वाहन हंस भी श्वेत है। ब्रह्मा सरस्वती तथा फरिश्तों को सदा श्वेत वस्त्रों में इसीलिए दिखाया जाता है। उनकी मधुर वाणी सुनने वालों ने प्याज लहसुन मांस मछली अंडे शराब सिगरेट बीड़ी इत्यादि सब छोड़ दिए थे। इससे तब सिंध में काफी हलचल हुई थी। यहाँ तक कि लोगों ने एक बार पिकेटिंग भी कर दी थी, परंतु मातेश्वरी सरस्वती जी ने सभी वत्सों को ऐसा अनुशासित किया था कि पिकेटिंग करने वाले भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना धरना उठा लिया। कुछ विरोधी तत्वों ने न्यायालय में अभियोग चला दिया, परंतु वहां भी मातेश्वरी जी निर्भय निश्चिंत निस्वार्थ और निर्मल स्थिति के द्वारा सबका सामना किया। जिस किसी विरोधी ने उन्हें देख लिया या उनसे थोड़ी बातचीत की वे उनके प्रशंसक बनकर रह गए। भले ही उनका तन इस संसार में था परंतु बुद्धि शिव पिता से जुड़ी रहती थी, इसलिए उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और रूहानी आकर्षण से भरा था। मातेश्वरी जी का तपोबल उच्च स्तरीय और विशुद्ध था। ऐसा महसूस होता था कि वे योग की शक्तिशाली स्टेज में स्थित होकर पवित्रता एवं दिव्यता की किरणें विकिरण कर रही हूँ।
विद्या की देवी सरस्वती का जन्म यज्ञ से हुआ माना जाता है। सोचने की बात है कि अग्नि कुंड वाले यज्ञ से तो किसी का जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अग्नि तो शरीर को जला देती है। इसका वास्तविक भाव यह है कि परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की स्थापना की। वहाँ ज्ञान से सरस्वती को नया जन्म मिला। शारीरिक रूप से तो पहले से ही वे थी, परंतु ज्ञान द्वारा उनका मन वचन और कर्म निर्मल अथवा कमल समान बने, इसलिए चित्रकार उन्हें कमल पुष्प पर आसीन दिखाते हैं। परंतु आज कोई भी विद्वान ये नहीं बता सकता कि ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म कैसे हुआ और प्रजापिता ब्रह्मा से उनका क्या संबंध है। ज्ञान यज्ञ की रचना करने वाले ब्रह्मा को ही यज्ञ पिता कहा जाता है। जिन्होंने उस ज्ञान से नया जीवन बनाया उन्हें ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं। इस दृष्टिकोण से सरस्वती भी ब्रह्मा की पुत्री ब्रह्मा कुमारी ही थी। ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मा कुमारों और ब्रह्मा कुमारियों ने विकारों की आहुतियां डाली थी और यथाशक्ति अपना तन मन धन दिया था। तन और धन की आहुति डालना तो फिर भी सहज होता है, परंतु मन की आहुति डालना अधिक कठिन होता है क्योंकि मन चंचल है। सरस्वती जी ने अपने मन और बुद्धि पूर्णतः परमात्मा को समर्पित कर दिए। इन दोनों की बलि के कारण वे काली कहलाई। इससे उनका संबंध पूर्णतः परमपिता परमात्मा से जुट गया। सभी नर नारियों के प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भरा था, इसलिए उन्हें जगदम्बा कहा गया। वरना स्थूल रूप में तो कोई भी सारे जगत की अम्बा नहीं होती। मम्मा का नाम राधे था। मम्मा का जन्म 1919 में अमृतसर में हुआ। अचानक सोने चांदी के व्यापार में उनके पिता का इतना घाटा हो गया कि उनकी हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई। फिर राधे अपनी माँ और छोटी बहन गोपी के साथ सिंध हैदराबाद अपनी नानी के घर आ गई। उनकी मौसेरी बहन ब्रह्मा कुमारी दादी शांतामणि जी बताती हैं कि हमारी और मम्मा की माँ सगी बहनें थी। हमारी एक और मासी थी जिनका नाम ध्यानी था, उसके पति का भी देहांत हो गया था। इस प्रकार उस घर में दो अपने पतियों को खोकर और तीन बहनें अपने बाप को खोकर बहुत दुखी थी। वे दो माताएं तो दुख से बहुत रोया करती थी। हमारी माँ जब साहेब सुखमणि आदि पढ़कर सुनाती थी। एक दिन बाबा की पत्नी यशोदा माता से माताजी ने कहा, हमारी दोनों बहनों के पति गुजर गए हैं, वे बहुत दुखी हैं। तब उन्होंने कहा, दादा अपने घर में बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, पहले आप आओ, अच्छा लगे तो उनको भी लेकर आना। हमारी माँ दूसरे दिन वहाँ गई। बाबा समझा रहे थे कि आत्मा अमर अविनाशी है, मरती नहीं है, पुराना शरीर छोड़ नया लेती है, इसलिए रोने की दरकार ही नहीं है, सब आत्मा का खेल है आदि। बाबा जब सत्संग शुरू करते थे और पूरा करते थे तब ओम की ध्वनि लगाते थे। ओम की ध्वनि सुनते ही सबको शरीर से भिन्न होने का अनुभव होता था। हमारी माँ को भी अनुभव हुआ तो अगले दिन वह दोनों बहनों को लेकर बाबा के पास गई। बाबा से आत्मा का पूरा ज्ञान सुनने और शरीर से भिन्न होने का अनुभव करने के बाद ये दुखी माताएं बहुत खुश हो गई। माँ और मासी के खिले हुए चेहरे देखकर राधे को बहुत आश्चर्य हुआ। राधे ने उनसे पूछा, कल तो आप दोनों बहुत रोती थी, आज तो चेहरे खुशनुमा है, वहाँ क्या मिला आपको? उनकी माँ ने कहा, दादा बहुत अच्छा गीता के ऊपर समझाते हैं। वह राधे को भी अगले दिन सत्संग में ले गई। जब राधे को बाबा ने देखा तब उसी पल बाबा को लगा कि यह मेरी वारिस बेटी है, और राधे को भी उसी क्षण महसूस हुआ कि यह मेरा बहुत काल से बिछड़ा हुआ वही पिता है। बाबा ने पूछा, बेटी तुम कैसी हो, क्या करती हो आदि। राधे सत्संग में ओम की ध्वनि बहुत अच्छी करती थी। आने वाले सब ओम की ध्वनि से बहुत आकर्षित होते थे, इसके कारण सब उसको ओम राधे कहने लगे। बाबा भी ओम राधे कहने लगे। इस तरह राधे का नाम ओम राधे हो गया। ओम राधे बहुत सुंदर गाती थी। जब उसने ओम मंडली में आकर क्या देखा और क्या पाया यह गीत लिख कर गाया तो बाबा बहुत प्रभावित हुए। बाबा रोज उनको एक गीत लिख कर देते थे और ओम राधे उसे क्लास में गाकर सुनाते थे। एक दिन गोपी बहन ओम की ध्वनि लगाते ही ध्यान में चली गई। उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया और वह उठकर डांस करने लगी। सत्संग में यह पहला साक्षात्कार था। इसके बाद सत्संग में आने वाले अन्य भाई बहनों को भी साक्षात्कार होने लगे। जब बाबा कश्मीर से आए तो उनको देखते ही गोपी को श्री कृष्ण दिखने लगा। उसी समय ओम राधे उसको श्री राधा दिखाई देने लगी। तब वह दोनों को पकड़कर रास करने लगी। धीरे धीरे वहां आने वाले सब ध्यान में जाने लगे। श्री कृष्ण, श्री राधा अथवा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी को देखने लगे और उनके साथ रास करने लगे। तब बाबा के मुखारविंद से निकली पवित्रता की बात। बाबा कहने लगे, बच्चे श्री कृष्ण की राजधानी वैकुंठ में जाना है तो तुमको पवित्र बनना पड़ेगा। जो कन्याएं थी उनको तो कोई समस्या नहीं थी, जो गृहस्थी थी और जिनके पति व्यापारार्थ विदेशों में गए थे वे आए तो कहने लगे कि हमें विकार रूपी विष चाहिए। पत्नी कहने लगी कि हमने तो परमात्मा को वचन दिया है कि हम पवित्र रहेंगे, हम विष दे नहीं सकते। तो उनके पति आपस में बातें करने लगे कि आखिर यह कौन जादूगर आया है जो सबको श्री कृष्ण का दर्शन कराता है और उनको पवित्र रहने के लिए कहता है। फिर विरोध प्रदर्शन, पिकेटिंग आदि शुरू हो गई। गोपी का साक्षात्कार का पाठ पूरे एक वर्ष तक चला। बाद में टाइफाइड से शरीर छोड़ दिया। तब बाबा ने सत्संग में जो भी माताएं कन्याएं आदि थी उन सबको शमशान घाट पर भेजा था। सिंध के इतिहास में यह पहली घटना थी, नहीं तो शमशान घाट पर स्त्रियां नहीं जाती थी। शव यात्रा में इतनी सारी महिलाओं को देख लोग आश्चर्य खा रहे थे। अग्नि संस्कार का कार्य ओम राधे ने ही किया था। मम्मा 17-18 साल की कन्या थी लेकिन सब उसको माँ कहते थे। बाबा भी कभी मम्मा कहते थे, कभी बेटी कहते थे। दिन प्रतिदिन सत्संग में वृद्धि होती चली गई तो बाबा ने ओम राधे को इस सत्संग के लिए अवैतनिक संचालिका नियुक्त किया और उनके साथ 8 ज्ञान निष्ठ माताओं और कन्याओं की एक कार्यकारिणी समिति बनाकर अपनी समस्त धन और समस्त संपत्ति अर्पित कर दी। मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वह रोज 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करती थी। बाबा की पत्नी यशोदा माता जब भी मम्मा को देखती थी तो उनको श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। बेगरी पाठ में मम्मा बाबा का जो पाठ था वो आश्चर्यचकित करने वाला और अवर्णनीय था। मम्मा बाबा जब तक सभी बच्चे नहीं खाते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे। बाबा की उपस्थिति में मम्मा कोई राय नहीं देती थी, जैसे बाबा कहे वही करती थी। बाबा की गैर हाजिरी में मम्मा अपना फैसला सुनाती थी, इतना बेहद सम्मान देती थी बाबा को। मम्मा का श्री लक्ष्मी का रूप मुझे बहुत प्यारा लगता था। लगता था कि श्री लक्ष्मी मेरी माँ है। मैं मम्मा को कभी इस नजर से नहीं देखती थी कि वह मेरी मासी की लड़की है, लेकिन इस नजर से देखती थी कि यह मेरी माँ है, जगदम्बा है। मम्मा तो गुणों की खान थी। मुझे मम्मा का गंभीरता, सहनशीलता और धैर्य धैर्य का गुण बहुत अच्छा लगता था। मम्मा हमेशा कहा करती थी, ऑलवेज सी गॉड फादर एंड फॉलो ब्रह्मा फादर।